ओम शांति। हम सबके सामने विशेष शांति वन से आप सभी के लिए यहाँ अपने विचार जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं और जीवन में धारण किए हैं और अपने जीवन को बाबा की शिक्षाओं से बनाया है, उन विचारों को आपके समक्ष शेयर करने के लिए आप सबके लिए आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता दीदी हम सबके सम्मुख हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैं कल भी कह रही थी कि ये जो अरावली की पर्वतमाला है इससे अनेक नदियों का उद्गम हुआ है। अभी जो बताया जाता है इतिहास में वो कुछ 3-4 के बारे में बताया जाता है, लेकिन अगर आप इसका प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे ना तो बहुत नदियों का उद्गम हुआ है और चारों तरफ नदियां निकल करके चारों तरफ फैली हैं और ये प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है जो दिल्ली तक जाती है। इसकी लास्ट लेग जो है वो दिल्ली में है। तो जैसे उस स्थूल में पर्वतमाला से अनेक, इस शिखर से अनेक नदियों का उद्गम हुआ है, ऐसे सूक्ष्म में भी इन पहाड़ों से या ज्ञान सागर परमात्मा से कहें या वो जो ज्ञान का शिखर है उनसे कहें, अनेक नदियों का, अनेक चैतन्य नदियों का उद्गम हुआ है। आप सभी तो गीता दीदी को जानते ही होंगे ना? तो बहु सरस दीदियों अने दादाओं ने क्लासेस तमने मळवानी छे। बहुत ही अच्छी रीति से कोई भी विषय को स्पष्ट करना अनुभव युक्त आपके क्लासेस होते हैं। मैं भी अनुभव करती हूँ कि जो प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव होते हैं उस आधार पर आपके क्लासेस होते हैं। एक होता है ज्ञान को सुना देना और एक होता है उसको कुछ बना करके पिरोसना और जैसे व्यक्ति सामने हो वैसा पिरोसना ना और उसको टेस्टी करके खिलाना, तो अंतर होता है ना उसमें। तो ऐसा आप टेस्टी भोजन परोसते हैं। वैसे आप 1969 में बाबा के इस ज्ञान से परिचित हुए। आपने साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड से, साउथ गुजरात का जो स्टेट बोर्ड है वहां से आपने टॉप किया था बोर्ड की परीक्षा में। काफी इंटेलिजेंट थे आप लौकिक पढ़ाई में भी, लेकिन बस फिर दिल लग गई कि बाबा का बनना है और बाबा के कार्य में लग जाना है। नहीं तो आगे भी उस पढ़ाई में जाते तो उसमें भी बहुत मेधावी थे ऑलरेडी, लेकिन फिर 1972 से आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। मोस्टली गुजरात में ही, भरूच, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, वहां सेवाएं दी। उसके पश्चात काफी वर्षों तक, 14-15 वर्षों तक मैं समझती हूँ, भावनगर सब जोन के आप सब जोन इंचार्ज रहे, वहां सारी सेवाएं दी। फिर बाबा को तो अपनी नदियों की जहां जरूरत पड़े वहां बहाने के लिए बुला लेते हैं ना। तो जब ज्ञान सरोवर अपना एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ये बना, तब बाबा ने आपको यहां बुलाया। तो मैंने देखा है हमारी जो बहने हैं, स्पेशली जो हमारी पुरानी बहने हैं, वो कभी ना नहीं कहते हैं, सदा हाँ जी। तो तुरंत आप यहाँ पर ज्ञान सरोवर में आए और ज्ञान सरोवर में आपने पूरा अकोमोडेशन और सारे जो भी आना जाना और उसके अलावा जो भी हमारे प्रोग्राम्स यहाँ चलते हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे वो टीचर्स की भर्तियाँ हो, चाहे वो कुमारियों की भर्तियाँ हो, चाहे वो इस तरह की भर्तियाँ जो भाई बहनों की होती हैं, चाहे शिविर हो, हर प्रोग्राम में आपके प्रभावशाली जो प्रवचन है वो रहते हैं और सब सुन करके गदगद हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, नदियां, वो नदियां तो बाहर बहने के लिए गई, ये नदी तो यहाँ ही बहती रहती है, यहाँ भी बहती है, बाहर भी बहती है, और अपने समान अनेकों को तैयार करके ना, जैसे बाबा ने कहा कि आप समान बनाओ और बाप समान बनाओ, तो इस तरह से बहते बहते कहाँ तक पहुँचते जा रहे हैं। तो ऐसे गीता दीदी का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से मैं कहूंगी कि मतलब कभी भी रिटर्न की अपेक्षा, जैसे किसी को होता है ना कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, या ये कभी बहुत बार मिलना जुलना होता है, अभी तो आप शांतिवन में ही रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा उनके मुख से नहीं सुना और ना किसी के मुख से सुना कि उन्होंने ऐसा कहा। तो ऐसा लोग कहते हैं गीता में, इनका आपका तो नाम ही गीता है, तो गीता में ही भगवान ने कहा है कि कर्म की फल की इच्छा मत रखो ना, तो मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जय पराजय, सब में समान एक ऐसा व्यक्तित्व ही है आपका। और इसलिए मैंने देखा है कि बड़ों के साथ ना, आप समान वालों के साथ, अपने छोटों के साथ हर रीति से मिलजुल करके रहना, जैसे आज बाबा ने कहा ना, भाव स्वभाव नहीं होना चाहिए, तो वो उस रीति से रहना, प्यार प्रेम से और आगे बढ़ते रहना, ये हमने आपके जीवन से सीखा है। तो ऐसी दीदी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज का आपका विषय है स्वस्थिति की महसूसता और कैसे उससे वायुमंडल पर परिवर्तन आता है, तो वो आप इस विषय में स्पष्ट करेंगे।
ओम शांति। इसी साल हम आपके पास आए और आप यहाँ आए हैं। बाबा का घर बेहद का घर है, हम सबका घर है, पर इस वर्ष पांडव भवन में भट्टी करने का चांस आप सबको भी मिला है। अच्छा लग रहा है हाँ? पांडव भवन में अच्छा लग रहा है? बाबा की तपोभूमि, कर्म भूमि, वरदानी भूमि, नेचुरल योगी बनने का वरदान है यह। मेहनत से योगी नहीं, नेचुरल योगी, क्योंकि कण कण में बाबा की याद समाई हुई है। यहाँ के इस वायुमंडल का लाभ लेकर अपने आप को भी नेचुरल योगी बनाना है। सदा बाबा याद रहे, मेहनत न लगे। हम सभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण भाई बहने, हम चाहते हैं कि निरंतर बाबा याद रहे। योग जोड़ना न पड़े, हम बाबा से जुड़े हुए ही हों। हमारा अंतिम लक्ष्य ही ये है बहन ने नदी की बात कही, सागर से ही उत्पन्न होती है और सागर में ही समा जाती है, है ना? हम सब उत्पन्न हुए ही है बाबा से, स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हम सबको अलौकिक जन्म दिया है। इस अलौकिक जीवन का कार्य भी वही है, सदा बहना, सदा आगे बढ़ना, कहीं भी अटकना नहीं। बातें तो हरेक के जीवन में आती हैं, खुद के संस्कारों से भी आती हैं, हिसाब किताब से भी आती हैं। बातें ऐसे तो आती नहीं है, हिसाब से ही आती है। कहने में हम कहते हैं कि दूसरों से पेपर आया, घर वालों से पेपर आया, परंतु मुझे ही क्यों आया, हिसाब है। पर कहीं भी अटकना नहीं, यही तो शक्तिशाली आत्मा की निशानी। सत्य मिल चुका है तो आखिरी लक्ष्य पर तो पहुंचना ही है। तो अटकेंगे क्यों? संगम युग है भी चढ़ती कला का। एक ही तो युग में चढ़ना है ना, बाकी तो सतयुग में आए और नेक्स्ट क्षण से उतरना है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि फिर चढ़ना क्यों है, ऐसे सोच लेते ना कहीं। पर जिस समय जो कार्य करना है वो करने में ही तो कल्याण है। समय चढ़ती कला का है, चाहे या न चाहे, पुरुषार्थ करें या न करें, चढ़ना तो है ही। वापस घर तो हरेक को जाना है। पर जो बाबा की आज्ञा पर और समय के इशारे को समझकर खुद को चढ़ती कला में ले जाएंगे तो भविष्य प्रारब्ध बनेगा। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, समय और परिस्थिति के मार से भी वापस तो घर जाना ही है, और दूसरा कार्य है खुद सदा चढ़ती कला में रहना, और दूसरा है कि जब तक बाबा में समा जाए, बाबा समान बेहद रूप धारण कर ले, तब तक की यात्रा में रास्ते में क्या करना है, नदी क्या करती, सबकी प्यास बुझाती है, जो स्नान करना चाहे उनको रिफ्रेश करती, अनाज उगाती है। पर आगे ही आगे बहती जाती है। हम सब बाबा के बच्चों का भी वही कार्य है इस पुरुषार्थ की यात्रा में, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बाबा जैसा बेहद का बनना। बल पार्ट हद में है, आपका लौकिक में है, हम भी कहीं कोई एक स्थान वहां ही निमित्त है ना, हरेक पार्ट हद का है, पर आत्मा को बेहद में जाना है। इसलिए पुरुषार्थ करते हैं कि हर लिमिट को क्रॉस करना, जो शरीर भान की लिमिट है, आत्मा को सबसे पहली बांधने वाली चीज कौन सी है? देह भान। बल रहना मुझे आत्मा को इस शरीर में है, लेकिन शरीर भान से अपने आप को ऊपर उठाना, आत्मस्थिति बेहद में ले जाने। तो पहला अभ्यास बाबा ने सिखाया कि इस देह की दीवार से डिटैच हो जाओ, इससे डिटैच हो जाओ। अटैच रहेंगे तो सीमा का अनुभव होगा, लिमिटेशन का अनुभव होगा, पर अगर मैं इस देह में रहते भी डिटैच रहती हूं तो मुझे सीमा का अनुभव नहीं हो, महसूसता नहीं, मैं उस कुर्सी से अटैच हो जाऊं और कुर्सी सहित चलना चाहूं तो मुश्किल होगा। पर जब आवश्यकता है बैठने के लिए उपयोग किया, फिर अलग हो जाती हूँ, डिटैच होती हूँ तो इजीली उठ करके जा सकती। तो पहला है डिटैचमेंट। हमारे योगी जीवन, तपस्वी जीवन का पहली शर्त है डिटैचमेंट, न्यारापन, देह भान से न्यारे हो जाए। मैं इनसे अलग हूं, ये बार बार महसूस कर। जिस शरीर को अपना समझते रहे, जिस देह संबंधों को अपना समझते रहे, जिस देह की दुनिया को अपना घर समझते रहे, बाबा उससे हमें अलग कर। एक कॉलेज के प्रिंसिपल, कोई आंदोलन में उनको जेल में जाना पड़ा, राजद्वारी जेल में रखा था, कोई श्रम नहीं था, सब सुविधाएं थी। जब बाहर निकले और सेंटर पर आए तो उनसे पूछा कि आपको वहां क्या सजा मिली। जो महसूस हो कि हमने कुछ गलत किया उसकी ये सजा है। बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने सुनाया कि हमें कोई कष्ट नहीं दिया गया, सब सुविधाएं थी, सब कुछ था, पर हरदम ये दिल खाता था, महसूस होता था कि मेरा अपना कोई नहीं। मैं समझता हूं कि ये जो हर क्षण अंदर महसूस होता रहा कि सब कुछ है पर मेरा अपना कोई नहीं है, यही सजा मुझे लगी, महसूस हुई। तो बाबा भी पहली सजा कहो, शिक्षा कहो, क्या देता है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा अटैचमेंट किस में होता है, खुद के शरीर में। तो बाबा उससे ही हमें अलग करते। बार बार ये महसूस करें कि मैं इससे अलग है। रावण की लंका में, लंका की शोक वाटिका में और रावण की राक्षसियों के बीच सीता अचल सलामत रही एक ही बल पर, एक दूसरा न कोई। तो कलियुगी दुनिया में कलियुगी संबंधों के बीच और कलियुगी तत्वों के बने शरीर के अंदर रहते हुए मुझ आत्मा को अलग रहना, क्योंकि जो भी आसपास है वो कोई मेरे नहीं है। शरीर, संबंध, प्रवृत्ति, संसार से लेकर सब कुछ, उससे मैं अलग, भले मेरे आसपास है पर मैं इनसे अलग। क्योंकि जब तक डिटैच नहीं होते हैं, हमारा योग बाबा से लग नहीं सकता। कहीं भी हम अटैच है तो बाबा से योग कैसे लगे। इसलिए पहला ही पाठ बाबा ने कौन सा सिखाया कि मैं इनसे अलग। ये तत्व है मैं आत्मा, शक्ति, चैतन्य, ज्योति, बिंदु। ये तो मिट्टी है, तो डिटैचमेंट, तो नेचुरली डिटैच होंगे, आत्मा लाइट बनेगी। देखो जितने अटैचमेंट है कपड़े पहने और गर्म कपड़े, कोट, ओवर कोट सब पहनो तो कितना वजन बढ़ जाता है, निकालो तो रिलैक्स लगता है। तो जितना अटैच है, फिर देह से है, संबंध से है, प्रवृत्ति से है, पदार्थ से है, स्थान से है, आदत से, उतनी आत्मा भारी, उड़ना सहज नहीं होगा। भक्ति में ये सत्य पता नहीं था, इसलिए बिचारे सब कुछ छोड़ के दूर चले गए। हमें बाबा ने ये मूल सत्य बता दिया तो हमें छोड़ने की मेहनत नहीं, पर इन सबके बीच रहते हुए अवेयरनेस, जागृति कि मैं इन सब से अलग, और ये बार बार महसूस कर, अभ्यास कर। जब भी बैठें ऐसे ही बैठें, कुछ ना भी कर रहे हों, पर अंदर से डिटैच होकर बैठ। दूसरा पुरुषार्थ बाबा ने हमें सिखाया कि इसको ट्रांसपेरेंट बना दो। ये तो बड़ी दीवार है और अटैच थे तो बड़े भारी थे। तो एक तो बाबा ने डिटैच किया, इससे भी हल्के बन गए, और मान लो दीवार के बीच है और वो दीवारें अगर कांच की बन जाएं तो व्यक्ति रिलैक्स तो होगा ना कि भाई कुछ तो दिख रहा है। तो बाबा ने क्या किया, हमारे को दूसरा पुरुषार्थ क्या सिखाया कि इसको लाइट बना। पहले हम ये चिंतन करते थे कि ये शरीर मिट्टी का है, पांच तत्व का है, और मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। अब हम बाबा के बच्चे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। फरिश्ता बाबा कहता है, तो अब हम क्या सोचेंगे कि अब ये लाइट का आकार है, ये लाइट का आकार। भल हम दुनिया देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, पर हम बिल्कुल डिटैच एंड लाइट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। अगर पारदर्शी बन जाए, ट्रांसपेरेंट बन जाए, तो भल सबके बीच रहेंगे, सब कुछ करेंगे, तो भी अटैच नहीं होंगे, क्योंकि वो मिट्टी है और हम तो लाइट है, ट्रांसपेरेंट है। आप मिट्टी पर लकीर बना सकते हैं, लाइट पर बना सकते नहीं, बना सकते। तो जब हम अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ज्योति बिंदु, प्रकाश के आकार में, जैसे हम रूम में लाल लाइट करते हैं, पर लाल लाइट में भी बाबा बिंदु दिखता है ना अलग, ऐसे लाइट के आकार में भी फिर मैं पॉइंट ऑफ लाइट। अब ये अभ्यास ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है ना, तो ट्रांसपेरेंट बनना, ब्राह्मण जीवन में ट्रांसपेरेंट बनना। पारदर्शी माने सब कुछ दिखाई देगा ना, ब्राह्मण जीवन ऐसा हो कुछ भी छिपाना न पड़े। कुछ भी छिपाना न पड़े। अब हरेक अपने आप को देखें कि ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं करते हैं जो छिपाना पड़े। फरिश्ता माना सिर्फ योग में लाइट नहीं, जब योग में बैठे तो मैं लाइट हूं फरिश्ता हूं, नहीं, प्रैक्टिकल ट्रांसपेरेंट जीवन खुली किताब के समान। कोई भी देखे, कभी भी देखे, कहीं भी देखे, अंतर नहीं होना चाहिए। कोई भी देखे, ज्ञानी देखे, अज्ञानी देखे, वीआईपी देखे या साधारण देखे, वीआईपी के सामने विशेष और साधारण के सामने साधारण, तो वो पारदर्शी नहीं। कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो हम हर कोई योगी बन जाएंगे, ऐसा नहीं, सदा योगी। सीधे शब्द में माता जी ने अंदर बाहर साफ एक। साफ अंदर बाहर साफ और एक का अर्थ ये भी नहीं कि सीधा बोल देना, वो भी नहीं है। बोलने का भी बाबा ने हमें तरीका सिखाया, पर अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कि कोई देखे या ना देखे, ज्ञानियों के बीच या अज्ञानियों के बीच, जहां कोई सेंटर नहीं, बाबा के बच्चे नहीं, पर हमारी धारणा में, मर्यादा में, नियम में, आचरण में फर्क नहीं, तो डिटैच ऐसे नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं ना, न्यारा और प्यारा दोनों चीज सीखनी, पर न्यारा ऐसे नहीं हो सकता है, देहभान से न्यारा। नेक्स्ट, जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कमल पुष्प, व्यक्तिगत जीवन, दूसरों के संबंध के जीवन का बाद में पहला है जो मेरी अपनी प्रवृत्ति है, मेरा अपना सोचना, देखना, बोलना, खाना पीना, चलना, निर्णय लेना, ये मेरे व्यक्तिगत काम है। उसमें कमल फूल, पवित्र, अनासक्त, अलिप्त, जब व्यक्तिगत जीवन कमल बनता है तो हम सहज योगी बन सकते। फिर है ट्रस्टी, खुद के रोल में साथियों के साथ लौकिक अलौकिक जिस किसी के साथ हमारा रोल है, वहां ट्रस्टी। ट्रस्टी हम निमित्त हैं और मालिक की आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। परसों ही था ना कि भल घर में रहते हैं पर श्रीमत पर मन वचन कर्म, तन मन धन का उपयोग करते हैं तो वो भी समर्पित है। ट्रस्टी नहीं सिर्फ समर्पित है। तो अपने रोल में ट्रस्टी, तो वो मुझे बांधेगा नहीं, आत्मा को बांधेगा नहीं। संबंध, जिम्मेवारियां, प्रवृत्ति, समाज, वो बंधन नहीं है। हम तो उनको कहते हैं इन सब का बहुत बंधन, वो बंधन नहीं है। बंधन तो यहां है कि हम वहां किस नजर से देखते हैं और चलते हैं। तो ट्रस्टी मुझे मेरी इच्छा मेरे संस्कार से पार्ट प्ले करना नहीं, ट्रस्टी माना मालिक की आज्ञा अनुसार पार्ट प्ले करना। तो आप खुद कभी भारी होंगे ही नहीं, रिएक्ट करेंगे ही नहीं, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बाबा के तरफ से पार्ट प्ले करना। आज बाबा ने कहा ना कि बाबा दुख हरता सुख करता है, तो हम बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना चाहिए ना, ऐसे बाबा ने कहा। खुद को फीलिंग तब आती है ना जब हम ये सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, पर अब हम अपने तरफ से है ही नहीं ना, हम तो बाबा के तरफ से, हम बाबा के तरफ से अब निमित्त, उसने जो रिएक्ट किया वो मेरे से नहीं किया है, बाबा से किया। मैं तो बीच में निमित्त, उसने बाबा से रिएक्ट किया, मुझे नहीं बोला है, मैं तो बाबा की तरफ से हूं। तो मुझे सामने ऐसे बोलना नहीं है क्योंकि मुझे बाबा को प्रेजेंट करना है, मैं उनकी प्रतिनिधि हूं। इतना डिटैच, खुद के रोल से भी डिटैच। ट्रस्टी, ये प्रैक्टिकल साइड है। न्यारा, देहभान से न्यारा, कमल फूल, ट्रस्टी। तो रिजल्ट आएगा। परिष्ठा पर, हल्का पर, लाइट एंड व्हाइट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। कोई बोझ नहीं महसूस होगा, हल्के रहेंगे। फरिश्ते को क्या दिखाते हैं? लाइट एंड व्हाइट, उड़ता। ये स्थिति की बात है। पर ये सारा पुरुषार्थ तब हम कर पाते हैं जब हमें ये महसूस हो कि अब मैं कौन हूं। बार बार महसूस करें कि मैं कौन हूं। अब मैं व्यक्ति नहीं, मैं योगी हूं, ईश्वरीय संतान हूं, बाबा की प्रतिनिधि हूं। कितने टाइटल बाबा ने दिए, कितने स्वमान बाबा ने दिए, कितने टाइटल बाबा ने हम बच्चों को दिए। आज कौन सा टाइटल दिया? राइट हैंड, राइट हैंड। हम सब राइट है क्योंकि राइटियस काम करते, सही कर्म करते, सत्य और शुभ कर्म करते, राइट है। कल कौन सा टाइटल दिया था? राज ऋषि, राजयोगी। ये महसूस कर, बाबा सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रहा है। कई कहते हैं बाबा ऐसे ही फूल चढ़ाते। अब बाबा को हमारे पर फूल चढ़ाने की क्या जरूरत है? बाबा हमारी ऊंचाई हमें महसूस कराते, हम कौन है क्या है, ये ऊंचाई नए 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 तरीके से टाइटल देकर बाबा हमें महसूस करा। कोई व्यक्ति के दिए टाइटल कितने फील होते हैं? कोई अगर कह दे कि बिल्कुल बुद्धू हैं आप, वो कितना स्वमान चढ़ जाता है। हाँ, बुद्धू का बुद्धू का बुद्धू का कितनी बार मन में आता है, क्या समझता है अपने आप को, सबके बीच में कहता है मैं ऐसी हूं ऐसी हूं। सारा स्वरूप अवस्था सब पर असर आता है एक ही टाइटल से। मनुष्य का दिया हुआ टच क्यों हुआ, स्वीकार क्यों हो गया? हमने अपना लेवल ऊंचा नहीं बनाया, अभी तक उसी लेवल में। ये फीलिंग क्यों आई? और बाबा रोज इतने हमें टाइटल देते हैं तो हमें वो फील हो, स्वरूप बने, स्थिति बने। क्योंकि हम यहां से अलग हुए नहीं हैं, ऊपर उठे नहीं हैं। हमें अपना लेवल, मुझ आत्मा का स्टैंडर्ड क्वालिटी ऊंचा बनाना है। इसलिए अगर एक ही चीज ये समझ में आ जाए, महसूस हो जाए कि मैं कौन हूं, मेरा रोल क्या है, मेरा स्थान क्या है, लौकिक परिवार में रहते हैं वहां मेरा स्थान क्या है, उस हिसाब से मेरा कर्तव्य क्या है, उस हिसाब से मेरा एटीट्यूड क्या है, बस अपने आप को उस अनुसार बनाओ। हर एक का रोल है ना, पति का रोल अपना है, पत्नी का अपना है, बच्चों का अपना है, सास का अपना है, आपका अपना, हरेक का रोल अपना है ना। मेरा रोल क्या है वो मुझे एक्यूरेट प्ले करना है, मेरा स्थान क्या है उस हिसाब से रोल क्या है, और वो रोल प्ले करने के लिए मुझे अपनी मनोस्थिति आत्मस्थिति कैसी बनानी। इस प्रकार अलौकिक में, इस अलौकिक परिवार में मेरा स्थान क्या है? टीचर का अपना रोल है, स्टूडेंट का अपना रोल है, इंचार्ज का अपना रोल है, निमित्त मुख्य जवाबदार का अपना रोल है। अगर हरेक अपना रोल समझ ले, अपना स्थान समझ ले, तो अपने आप हम उस अनुसार व्यवहार करेंगे ना। पर ये महसूस हो, क्लैरिटी हो, एक बार बाबा के पास से ग्रुप लेके आई थी, अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आए थे, तो बाबा ने कहा था, कुछ खिटपिट थी सेंटर में, भाई बहने ज्यादा कुछ माथा मार रहे होंगे, तो बाबा ने फिर कहा कि आपका रोल क्या है, उसके बजाय बाबा का रोल आप प्ले करेंगे और बाबा जितनी शक्ति तो है नहीं, तो फिर अवस्था क्या हो जाएगी? हमारा स्थान क्या है? है ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन में ये सब महसूस करना है। मैं आत्मा हूं सिर्फ इतना नहीं, पर मुझे आत्मा का रोल क्या है, लौकिक में अलौकिक में कार्यक्षेत्र में और पर्सनल लाइफ में, चार चीज है हमारे संग। व्यक्तिगत जीवन जो आपका रोज का रूटीन है, हम कहते हैं भाई मेरा पर्सनल मानना ये है, व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन ये है, तो पर्सनल लाइफ तो है ना। व्यक्तिगत जीवन में हम क्या है कैसे है? फिर लौकिक परिवार अलौकिक परिवार और कार्यक्षेत्र, पार्ट तो हरेक को प्ले करना है और वो प्ले करते हुए अवस्था बनानी है, स्थिति बनानी है ना। अल्टीमेट अचीवमेंट तो वो है, बहुत सेवा की रोज क्लास किए, पर रिजल्ट क्या चाहिए? शक्तिशाली ज्ञान युक्त आत्मस्थिति चाहिए। क्योंकि अंत तक मुझे आत्मा को ही हर बात पार करनी है, तो मुझे अपनी स्थिति है ना, अचल अडोल शक्तिशाली शुद्ध दिव्य अल्टीमेट, तो मुझे आत्मा के साथ क्या चलेगा, मेरी स्थिति चलेगी। हमने अपनी आध्यात्मिक स्थिति कहां तक बनाई, और हम हरेक जानते हैं कि अभी ही बना सकते, फिर कोई बनाने वाला नहीं है, ना ज्ञान होगा ना बनाने वाला बाबा होगा, है ना। अभी बाबा समझा भी रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं, इस ईश्वरीय परिवार में क्या है मेरा स्थान, तो मुझे मेरा रोल प्ले करना। मैं स्टूडेंट हूं और टीचर बन जाऊं, टीचर हूं और वो जवाबदारी का रोल ही प्ले ना करूं, नहीं। हरेक का अपना अपना स्थान है, रोल है। दुनिया में भी लोगों को खुद की महसूसता होती है ना, वो बॉडी कॉन्शियस है इसलिए अभिमान के रूप में होती, देहभान के रूप में होती कि भाई हम कौन सी जाति के हैं, कुल के हैं, खानदान के हैं, मैं क्या पढ़ी हूं, किस पोजीशन पर जॉब कर रही, मेरे परिवार का समाज में क्या स्थान है। इंसान ये सारी बातें माइंड करता है ना, ध्यान रखता है ना, उस अनुसार व्यवहार करता है ना, वहां देह भान के रूप में, यहां आत्म भान के रूप में। मैं कौन हूं, किसकी हूं और मुझे अब क्या करना है, अब मेरा रोल क्या है। अब हम बाबा के तरफ से निमित्त, हम इतने बड़े यज्ञ को रिप्रेजेंट कर रहे। अब आप एक व्यक्ति नहीं है, अब हरेक आपको किस नजर से देखते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था के रूप में थे, एक व्यक्ति के रूप में नहीं समझते, ये ब्रह्मा कुमारी वाले, हाँ ये ओम शांति वाले, ये शिव बाबा वाले, ऐसे ही कहते हैं। कमजोरी व्यक्तिगत हमारी होती है, पर वो क्या कहते हैं, क्यों वहां ऐसा सिखाते, हाँ ब्रह्मा कुमारी में ऐसा सिखाते, उनको पता है क्या सिखाते उनको सारा पता है, धारण भले नहीं करना है, पर क्योंकि हम ही लोगों को बताते हैं ना कि हम क्या सिखाते अब सारी दुनिया जान चुकी है, क्योंकि हमने सबको मैसेज दिया, हमने सबको संदेश दिया है ना, गांव गांव गली गली में जाकर के। अब हम गड़बड़ नहीं कर सकते क्योंकि लोग जानते हैं इनके नियम क्या है इनकी धारणाएं क्या है, ये क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं। अगर ये महसूसता मुझे है, दादी जानकी कहती है ना, तीन बार ओम शांति बोलती हूँ पहली ओम शांति माना मैं कौन, दूसरी ओम शांति माना मेरा कौन, और तीसरी ओम शांति माना मुझे क्या करना है। मैं कौन और किसकी, तो उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप क्लियर होता है ना, पूछने की जरूरत है हा? किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं ना, कि हमें तो दीदी ने बताया नहीं, कोई मुरली में तो ऐसा आया नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, बाबा ने हर बात हमें समझा दी, बस उसी में स्थिर रहना। इस अनुभूति से चलित नहीं होना, जो स्व में स्थित है वो राइट डिसीजन ले सके। उसको अपने आप विवेक ही बताएगा, क्योंकि बाबा के ज्ञान से सद्विवेक आता है ना, दिव्य बुद्धि आती है, हमें खुद ही समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अब चूंकि हम बाबा के बच्चे, कोई 2 साल से 5 साल से 10 साल से 20 साल से 40 साल से, नित्य अभ्यास कर रहे हैं, अब हमारे में ये सद्विवेक तो आ ही गया है कि हम कौन हैं, किसके हैं और किस लिए हैं। अब हमारा जीवन अलौकिक कार्यों के लिए, हम दुनिया को भी कहते हैं कि हमने दुनिया में विशेष कुछ नहीं किया, वे हम बाबा के बने, हमने छोड़ दिया पढ़ना, हमने धंधा समेट लिया, लिमिट कर दी। हम ये करने वाले थे पर बाबा के बने, हमने ये छोड़ दिया, वाइंड अप कर लिया, लिमिट कर लिया, कैसे है ठीक है। पर जो लिया हमने हाथ में, उसमें क्या बने, उसमें क्या बने। चलो दुनिया छोड़ दी, दुनिया के फील्ड छोड़ दिए, वो पढ़ाई छोड़ दी, लौकिक सांसारिक भौतिक इच्छाएं हमारी अब नहीं है इतनी, हमने ये सब क्यों छोड़ा। क्या कहते हैं सबको, क्या बताते हैं हम, बाबा मिला, ज्ञान मिला, इसलिए हमने ये छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अच्छी बात है, पर जो ज्ञान योग हमने लिया उसमें हम क्या बने, वो रिजल्ट तो बताना है ना, वो रिजल्ट हमें बताना है। अब हम अलौकिक हैं, मैं आत्मा अलौकिक हूं, सत्य हूं, दिव्य हूं, पर्सनल स्व में भी हम क्या क्या है। चलो बाबा के रिलेशन में तो हम है ही कि हम भगवान के बच्चे हैं, वो तो बहुत सारे टाइटल मिलते हैं, पर पर्सनल स्व में भी तो मैं आत्मा सत्य हूं, शुद्ध हूं, दिव्य हूं। अगर ये जितना क्लियर रहेगा, हमारा अपने आप कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल रहेगा, प्रैक्टिकल कर्म हमारे ठीक होंगे, हमें खुद महसूस होगा कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये मुझे नहीं करना है। इसने मुझे अपशब्द कहा पर मुझे नहीं कहना है, क्यों नहीं कहना है, क्योंकि मैं कौन हूं। उस हिसाब से मुझे अच्छे शब्द ही बोलने, हमारा रोल तो वरदान देने का है ना, शुभ बोलने का, शुभ भावना रखने का। इसलिए स्व से चलित नहीं होना, हम खुद ही खुद के जीवन के केंद्र बिंदु है, उसी में स्थित रहे तो स्थिर रहेंगे, अचल रहेंगे, कोई नेगेटिव प्रभाव हमारे पर नहीं आएगा। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है और साइलेंस में बैठकर खुद खुद को रियलाइज करने की आवश्यकता। हम योग में क्या करते, साइलेंस में बैठकर खुद की सत्यता, खुद को रिवाइज कराते। बाबा के संबंध की ऊंचाई खुद को रियलाइज कराते। इसलिए बहुत अच्छा मौका मिलता है जब कभी भी भट्ठी में बैठते हैं, तपस्या के प्रोग्राम बनते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, हम खुद को अटेंटिव एम्पावर कर सकते हैं। अब जरूरत है खुद को बनाने के लिए खुद के अटेंशन। बाबा ने बहुत पालना दी, दादियों ने बहुत पालना दी, दीदियों ने, निमित्त आत्माओं ने बहुत पालना दी, परिवार के सहयोग हमें बहुत मिले, इससे हम इतने बने जो जितना बना है। अकेला तो नहीं बना है ना, सबकी पालना से हम बने ना। अब जो बाकी परसेंटेज है वो किससे बनेंगे? चलो बाबा की इतनी पालना, दादियों की, मधुबन की, सेंटर की, निमित्त आत्माओं की, बड़ों की, ईश्वरीय परिवार की पालना से अभी हमारा ये रिजल्ट है। हर एक खुद को जानता है 40, 50, 60, 70, 80 कितना परसेंट जो भी बना है। अब जो 20, 30, 40, 50% बाकी है वो किससे बनेंगे? स्वयं के पुरुषार्थ से, क्योंकि बाकी पालनाएं तो अब समेट रही है ना। बाबा का पार्ट बाबा भी समेट रहा है, दादियां भी समेट रही, बड़े भी अब समेट रहे ना, सब बुजुर्ग बन गए। तो अब जो बाकी है वो हम तब बनेंगे जब हम खुद बनना चाहेंगे और अटेंशन। तो ये मौका है साइलेंस में बैठ के अच्छी तरह खुद के लिए हम सोच सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। ओम शांति।
सार में कहें तो पहला गुजराती भजन नी पंक्तियों छे, फुलड़ू बनू के भले धूप सड़ी थाऊ, आशा छे सामग्री पूजा नी थाऊ, भले काया आराख थई शमे, मारू जीवन सुगंधी बने। जेवू जीवन गीता दीदी ए पोतानु बनाव्यु छे एवू जीवन बनावानी आपने पन प्रेरणा आपे छे। तो आपणे डेफिनेटली जे दीदी ए कीधु छे एमना शब्दों ने साकार करीशु ना। हाथनी थाळी हलावी, खूब खूब आभार।
2 मिनट बाबा की याद
आकाश घेर।